ये परीक्षा और ज्ञान की दृष्टि से आज जो मैं कारिका पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर की कारिका है आपकी पुस्तक में। नित्याह शब्दार्थ संबंधाः समामनाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः। इसमें ये बताया गया है कि शब्द अर्थ संबंधाः नित्याः, शब्द अर्थ और उन दोनों का संबंध, ये तीनों जो हैं ये नित्याः यानी नित्य होते हैं। शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, तयोः शब्दार्थयोः संबंधश्च नित्यः। शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है और शब्द अर्थ का जो संबंध है वह भी नित्य है। कहा कि ये किसने बोला है तो आगे कहते हैं कि महर्षि भी ही समामनाताः, महर्षि भी महर्षियों के द्वारा समामनाताः माने कथिताः, महर्षियों के द्वारा ये कहा गया है। क्या कहा गया है, वही कि शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है और शब्द अर्थ का संबंध भी नित्य है। ताकि ये कहाँ पर महर्षियों ने बोला है तो उसके लिए बताया कि सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः, माने सूत्र के जो प्रणेता पाणिनि है और वार्तिक के प्रणेता जो कात्यायन है और भाष्य के जो प्रणेता पतंजलि हैं, ये प्रणेता जो महर्षि हैं ये तीनों, इन्हीं तीनों महर्षियों ने शब्द अर्थ संबंध को नित्य बताया है। तो ये महर्षि भी जो है उससे पहले अगर अन्वय करना चाहें तो ऐसा करेंगे, महर्षि भी को प्रणेत्र भी के बाद जोड़ दीजिए और लास्ट में समामनाता कहिए तो क्या होगा कि सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः महर्षिभिः समामनाताः। अगर पूरा कंप्लीट अन्वय करना चाहें तो समामनाताः से पहले नित्याः शब्दार्थ संबंधाः जोड़ दीजिए। अब मैं पूरा बताता हूँ एक बार कि सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः महर्षिभिः नित्याः शब्दार्थ संबंधाः समामनाताः। अब जिस क्रम से मैंने बोला उसी क्रम से अर्थ कर लीजिए। सूत्राणाम माने सूत्रों के, सानुतंत्राणाम अनुतंत्र कहते हैं वार्तिक को और सानुतंत्र कहते हैं वार्तिक सहित को। तो सूत्र के प्रणेता, वार्तिक के प्रणेता और भाष्य के प्रणेता महर्षियों ने शब्द अर्थ संबंध को नित्य कहा है, ये इसका अर्थ हुआ। अब आपको ये जानना है कि ये किस शब्द की बात हो रही है, किस अर्थ की बात हो रही है और किस संबंध की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जो शब्द लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, तो स्फोट शब्द, स्फोट जो है वो मध्यमा वाणी आपने सुना होगा, परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, तो मध्यमा वाणी जो होती है वही स्फोटात्मक होती है और वह जो स्फोट है वही यहाँ पर शब्द शब्द से लिया जाएगा। अर्थ से किसको लेना है, तो अर्थ जो है ना वो यहाँ पर जाति अर्थ लेना है। देखो दोनों अर्थ होते हैं, जाति अर्थ भी होता है शब्द का और व्यक्ति अर्थ भी होता है शब्द का, लेकिन व्यक्ति अनित्य होती है और जाति जो है वह नित्य होती है। इसीलिए हमें अर्थ शब्द से यहाँ पर जाति अर्थ को लेना है, तो शब्द से लेना है स्फोट को और अर्थ से लेना है जाति रूप अर्थ को। और संबंध से किसको लेना है, तो संबंध जो है ना शब्द और अर्थ के बीच में जो रहने वाला संबंध है वह कौन सा संबंध है, वह है तादात्म्य संबंध। क्या कहेंगे उसको, तादात्म्य संबंध। तो यह जो स्फोट शब्द है, स्फोटात्मक जो शब्द है, जात्यात्मक जो अर्थ है और तादात्म्यात्मक जो संबंध है, फिर से सुन लीजिए, स्फोटात्मक शब्द, जात्यात्मक अर्थ और तादात्म्यात्मक संबंध, ये जो तीनों हैं यही हैं शब्द अर्थ संबंध, ये जो तीनों हैं ये तीनों नित्य होते हैं। और इसको जो है ना सूत्रकार ने भी बोला है, वार्तिककार ने भी बोला है और भाष्यकार ने भी बोला है। अब मन में आ रहा होगा कि सूत्रकार ने कहाँ बोला, तो ऐसा है पाणिनि का एक सूत्र है तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वाद, फिर से बोलता हूँ तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वाद। तो यह जो पाणिनि का सूत्र है इस सूत्र से शब्द अर्थ संबंध की जो है ना नित्यता प्रमाणित होती है। दूसरा वार्तिककार जो है कात्यायन, उन्होंने बोला है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। ये जो वार्तिक है इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट ही कहा गया है कि शब्दार्थ संबंध सिद्ध है, सिद्ध है मतलब नित्य है। और भाष्यकार ने कहाँ कहा, तो पस्पशानिक में उन्होंने कहा भाष्यकार ने कि नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अभिचालिभिः इत्यादि कहा है। तो यहाँ इन्होंने नित्येषु शब्देषु जो बोला है तो क्लियर कह रहे हैं कि शब्द जो है वह नित्य होता है। तो इस तरह से तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् इस पाणिनि के सूत्र से, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस कात्यायन के वार्तिक से, और नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अभिचालिभिः इस महाभाष्य की पंक्ति से ये सिद्ध होता है कि शब्द अर्थ और संबंध नित्य होता है। फिर से बता दूं, शब्द का मतलब यहाँ पर है स्फोटात्मक शब्द, अर्थ का मतलब है जात्यात्मक अर्थ, और संबंध का मतलब है यहाँ पर तादात्म्य रूप संबंध अथवा तादात्म्यात्मक संबंध। ये तीनों जो हैं ये तीनों नित्य हैं। अब 24वीं कारिका में जो है ना 24 और 25 इन दोनों कारिकाओं में आपको व्याकरण शास्त्र के जो प्रमेय हैं, जिसको हम पदार्थ भी कह सकते हैं, हैं तो व्याकरण शास्त्र में 8 प्रमेय माने गए हैं अथवा 8 पदार्थ माने गए हैं। परीक्षा में अगर पूछे कि व्याकरण शास्त्र कति प्रमेयाः अथवा कति पदार्थाः, तो लिखना है अष्टौ प्रमेयाः अथवा अष्टौ पदार्थाः, कि व्याकरण दर्शन में 8 प्रकार के प्रमेय हैं। वो कौन कौन 8 प्रकार के प्रमेय हैं वो 24 और 25 नंबर की कारिका में बताया गया है, आप इसको जो है ना जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला जो है अर्थ दो प्रकार का है, एक है अपोद्धार पदार्थ और दूसरा है स्थित लक्षण अर्थ। अर्थ दो प्रकार का कौन कौन, अपोद्धार पदार्थ और दूसरा स्थित लक्षण अर्थ। फिर शब्द भी दो प्रकार का है, कौन कौन, एक है अन्वाख्येय शब्द और दूसरा है प्रतिपादक शब्द। अन्वाख्येय शब्द और दूसरा है प्रतिपादक शब्द, तो दो प्रकार के अर्थ हो गए, दो प्रकार के शब्द हो गए, तो 4 हो गए ना। इसी को 24वीं कारिका में कहा कि अपोद्धार पदार्था ये 4 था, स्थित लक्षण अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः, माने दो प्रकार के अर्थ कौन कौन, एक अपोद्धार पदार्थ दूसरा स्थित लक्षण अर्थ। दो प्रकार के शब्द होते हैं कौन, तो एक अन्वाख्येय शब्द दूसरा प्रतिपादक शब्द। तो जिस तरह से दो तरह के संबंध, दो तरह के शब्द होते हैं, दो तरह के अर्थ होते हैं, उसी तरह से शब्द और अर्थ में रहने वाला जो संबंध है वह भी दो प्रकार का होता है। और इसका जो है ना प्रयोजन जो है वह भी दो प्रकार का होता है। तो शब्द अर्थ दो प्रकार का, शब्द दो प्रकार का, संबंध दो प्रकार का और प्रयोजन दो प्रकार का। तो शब्द और अर्थ जो दो दो प्रकार का होता है उसको 24वीं कारिका में बताया इन्होंने, और 25वीं कारिका में दो प्रकार का संबंध होता है और दो प्रकार का प्रयोजन होता है ये बताया है कि कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः धर्मे च ये प्रत्यये चांगम संबंधाः साध्व साधुषु। कहा कि संबंध जो है शब्द अर्थ के संबंध दो प्रकार के हैं, एक है कार्य कारण भाव संबंध और दूसरा है योग्य भाव संबंध। योग्य भाव मतलब योग्यता संबंध, एक है कार्य कारण संबंध और दूसरा है योग्यता संबंध। तो दो अर्थ, दो शब्द और दो संबंध, छह हो गए। अब दो जो बाकी है ना आठ में, वो है प्रयोजन। धर्म में ये प्रत्यय चा, माने एक प्रयोजन धर्म होता है और दूसरा प्रयोजन प्रत्यय होता है। प्रत्यय का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, बोध। तो पुण्य और बोध ये दोनों जो हैं ये प्रयोजन होते हैं, और ये आठों जो हैं यही आठों व्याकरण शास्त्र में या व्याकरण दर्शन में प्रमेय के रूप में माने गए हैं। यहाँ पर धर्म में ये प्रत्यय च अंगम, अंगम का अर्थ है यहाँ पर निमित्तम, माने कारणम। संबंधाः साधु असाधु, और ये जो संबंध रहता है कौन संबंध, कार्य कारण भाव संबंध और योग्यता संबंध, ये साधुसु असाधुसु च, माने साधु शब्द में भी रहता है और असाधु शब्द में भी रहता है। असल में न्याय दर्शन वाले जो है ना, वो साधु शब्द में तो संबंध मानते हैं, असाधु शब्द में संबंध नहीं मानते, लेकिन व्याकरण दर्शन में दोनों तरह के शब्द में संबंध माना जाता है, साधु शब्द में भी और असाधु शब्द में भी। फिर से एक बार मैं आठों की गिनती करा देता हूँ। अर्थ दो प्रकार के हो गए, एक अपोद्धार पदार्थ, दूसरा स्थित लक्षण अर्थ। शब्द दो प्रकार का हो गया, अन्वाख्येय शब्द और प्रतिपादक शब्द। संबंध दो प्रकार का हो गया, कार्य कारण भाव संबंध और योग्यता संबंध। शास्त्र का प्रयोजन दो प्रकार का हो गया, धर्म और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान। अब जो है हमें थोड़ा सा, ये जो हमने आठ की गिनती कर ली, अब हमें ये सीखना है कि ये अपोद्धार पदार्थ क्या होता है, स्थित लक्षण अर्थ क्या होता है, अन्वाख्येय शब्द क्या होता है, प्रतिपादक शब्द क्या होता है, इन सब बातों को सीखना। अगर कलम कापी हो आपके पास तो लिख लीजिए। अपोद्धार पदार्थ का मतलब होता है प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ। अपोद्धार पदार्थ का मतलब हो गया प्रकृति अर्थ और प्रत्यय अर्थ। प्रकृति का जो अर्थ है वो भी अपोद्धार पदार्थ हुआ, और प्रत्यय का जो अर्थ है वो भी अपोद्धार पदार्थ हुआ। ऐसे अपोद्धार पदार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसको वाक्य से अलग करके जो पद का अर्थ निकाला जाए, वाक्य से पद को अलग करके जो अर्थ निकाला जाए उसको कहते हैं अपोद्धार पदार्थ। तो वाक्य में से जो है ना अपोद्धार किया जाता है, माने निकाला जाता है किसको, पद को, और वह उस पद में क्या रहता है, तो प्रकृति रहती है, प्रत्यय रहता है। तो उसी प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ है वह हो गया अपोद्धार पदार्थ। ये हुआ एक प्रकार का प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ, जिसको हम अपोद्धार पदार्थ कहते हैं। दूसरा हो गया स्थित लक्षण अर्थ। स्थित लक्षण अर्थ से जो है ना दो लेना है, एक पदार्थ और एक वाक्यार्थ। जैसे अपोद्धार पदार्थ में आपने लिया ना प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ, ऐसे ही स्थित लक्षण अर्थ से लीजिए क्या, पदार्थ और वाक्यार्थ। अब आगे आइए, अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः। अन्वाख्येय शब्द कौन हो गया, तो जिसका अन्वाख्यान किया जाए, माने जिसको आप उच्चारण करके और उसके बारे में बताया जाए, अनुशासन किया जाए, उसको अन्वाख्येय शब्द कहते हैं। ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रकृति और प्रत्यय। तो अन्वाख्येय शब्द का मतलब हो गया प्रकृति और प्रत्यय। दूसरा जो शब्द है प्रतिपादक शब्द, वो क्या है, तो प्रतिपादक शब्द होता, प्रतिपादक मतलब अर्थ का प्रतिपादक। तो अर्थ का प्रतिपादक कौन होता है, पद होता है और वाक्य होता है। तो प्रतिपादक शब्द हो गए पद और वाक्य। फिर से सुन लीजिए, अन्वाख्येय शब्द हो गया प्रकृति प्रत्यय, और प्रतिपादक शब्द हो गया पद और वाक्य। संबंध आपने अलग से लिखी लिया है कि एक संबंध होता है कार्य कारण भाव संबंध और दूसरा होता है योग्यता संबंध। और प्रयोजन भी दो प्रकार का होता है, ये भी आपने नोट किया होगा कि एक तो प्रयोजन धर्म होता है और दूसरा प्रत्यय मतलब बोध होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कार्य कारण भाव संबंध और योग्यता संबंध कैसे होता है शब्द और अर्थ में। तो ऐसा है कि शब्द सुनने से हमें अर्थ का ज्ञान होता है, तो अर्थ के ज्ञान में शब्द का ज्ञान कारण हुआ ना, तो शब्द ज्ञान हो गया कारण और अर्थ ज्ञान हो गया कार्य, इसलिए इन दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। इसको आप दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं कि जब अर्थ ज्ञान हमें रहता है तो अब हम विवक्षा करके शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इस तरह से शब्द का उच्चारण जो है ना वह बाद में होता है, वह हो गया कार्य, और अर्थ का ज्ञान पहले रहता है विवक्षा में तो वह हो गया कारण। तो शब्द और अर्थ एक दूसरे के प्रति जो है ना वो कार्य कारण है, शब्द अर्थ के प्रति कार्य है और अर्थ जो है शब्द के प्रति कार्य है, इसी तरह से शब्द अर्थ के प्रति कारण है और अर्थ शब्द के प्रति कारण है। कैसे? तो मैंने बताया कि शब्द ज्ञान होने से अर्थ का ज्ञान होता है, तो शब्द ज्ञान हो गया कारण और अर्थ ज्ञान हो गया कार्य। इसी तरह से उल्टा करिए कि अर्थ ज्ञान रहने पर विवक्षा करने से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अर्थ ज्ञान हो गया कारण और शब्द का उच्चारण या शब्द का प्रयोग हो गया कार्य। इस तरह से इन दोनों में कार्य कारण भाव संबंध होता है। और योग्यता संबंध कैसे होता है? तो जैसे इंद्रिय और विषय में परस्पर प्रकाश से प्रकाशक भाव संबंध होता है, इंद्रिय जो है वह प्रकाशक होता है और वस्तु जो होती है वह प्रकाश से, जैसे आँख से हम घरे को देखते हैं तो आँख जो है वहाँ पर आँख में देखने की योग्यता है और अति घरे में दिखने की योग्यता है, तो एक में देखने की एक में दिखने की योग्यता। इसी तरह से कान जो है उसमें सुनने की योग्यता है और शब्द में सुनाई देने की योग्यता है। तो जैसे इंद्रिय और विषय में योग्यता संबंध होता है, उसी तरह से शब्द और अर्थ में भी योग्यता संबंध होता है। शब्द में जो है ना बोधकत्व योग्यता है और अर्थ में जो है वह बोध्यत्व योग्यता है। इसको दूसरे शब्द से भी कह सकते हैं, शब्द में वाचकत्व योग्यता है और अर्थ में वाच्यत्व योग्यता है। इस तरह से शब्द और अर्थ में कार्य कारण भाव संबंध होता है और योग्यता संबंध होता है। अच्छा, प्रयोजन जो बताए गए धर्म और प्रत्यय, इसको जो है ना माने साधु शब्द के प्रयोग करने से धर्म होता है और प्रत्यय भी होता है, माने अर्थ का भी बोध होता है, किंतु असाधु शब्द के प्रयोग करने से धर्म नहीं मिलता है लेकिन प्रत्यय होता है, अर्थबोध होता है। यही साधु और असाधु के प्रयोजन में अंतर है। साधु शब्द के प्रयोग करने पर धर्म भी होता है, बोध भी होता है, और असाधु शब्द के प्रयोग करने पर धर्म तो नहीं होता किंतु अर्थबोध होता है। इस तरह से हमने 8 प्रमेयों को आपको बताया। आज का पाठ हम यहीं स्थगित करते हैं।